उत्तर पूर्व अद्भुत रोमांचक और मनोहारी उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर पूर्वोत्तर डायरी।
नमस्कार श्रोताओं, पूर्वोत्तर डायरी के एक ताजा अंक में आप सभी का स्वागत है। हर रविवार शाम 5:30 बजे हम पूर्वोत्तर डायरी के पन्नों को आपके साथ खोलते हैं और भारत के पूर्वोत्तर हिस्से से जुड़ी गतिविधियां, वहां की सांस्कृतिक झलक, कला और संस्कृति से आपको रूबरू करवाते हैं। हर रविवार शाम 5:30 बजे इस कार्यक्रम को लेकर उपस्थित होता हूं मैं आपके बीच कमल कुमार प्रजापति। पूर्वोत्तर डायरी के आज के अंक की शुरुआत हम कर रहे हैं पूर्वोत्तर राज्यों में बीते दिनों हुई कुछ गतिविधियों से। तो त्रिपुरा, सिक्किम और नागालैंड में जो बीते दिनों कुछ गतिविधियां आयोजित हुई, जो कुछ समाचार हमें प्राप्त हुए हैं, हमारे संवाददाताओं ने उनका लेखा जोखा हम तक पहुंचाया है। तो एक विशेष रिपोर्ट में इन पूरी गतिविधियों और समाचारों का संकलन हमने किया है। आइए आपको सुनवाते हैं कि त्रिपुरा, सिक्किम और नागालैंड से बीते दिनों के क्या समाचार हैं।
सिक्किम में मौसम सुहावना होने के कारण पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। रुक रुक कर हो रही बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी से गंगटोक समेत कई स्थानों पर पारा गिरा है। पिछले दिनों गंगटोक और आसपास के क्षेत्रों में भी हल्की बारिश दर्ज की गई। मौसम का आनंद लेने के लिए पर्यटक यहां बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। नाथुला, नामची, लांचुंग, युमथांग वैली और जीरो पॉइंट जैसे पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की आवाजाही धीरे धीरे बढ़ रही है। हालांकि उत्तरी सिक्किम का एक और पसंदीदा स्थल लाचेन अगले पर्यटन सीजन में खुलेगा। पर्यटन सीजन की शुरुआत से होटल व्यवसायियों और वाहन मालिकों को अच्छा कारोबार मिल रहा है। सिक्किम सरकार भी पर्यटकों के गंतव्यों तक जाने वाली सड़कों को बेहतर बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। केंद्र सरकार की बैटलफील्ड टूरिज्म पहल के तहत सिक्किम के दो सामरिक स्थल डोकलाम और चोला इस साल 15 दिसंबर तक पर्यटकों के लिए खोल दिए जाएंगे। पर्यटन विभाग के अपर मुख्य सचिव सीएस राव ने गंगटोक में मीडिया को ये जानकारी दी। पहले इन स्थानों को 27 सितंबर को खोले जाने का कार्यक्रम था, लेकिन बाद में राज्य सरकार ने नई समय सीमा तय की। श्री राव ने बताया कि इन स्थलों पर सभी लंबित कार्यों को तेजी से पूरा किया जा रहा है और बुनियादी ढांचे का काम जल्द ही समाप्त होने की उम्मीद है, ताकि पर्यटक आसानी से दोनों स्थलों तक पहुंच सके। डोकलाम लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और ये गंगटोक से करीब 70 किलोमीटर दूर है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में उमाकांता एकेडमी इंग्लिश मीडियम स्कूल के प्रांगण में 2 दिवसीय बाल विज्ञान प्रदर्शनी का समापन हो गया। इस जीवंत आयोजन का उद्देश्य छात्रों में वैज्ञानिक सोच और समस्या समाधान के कौशल को बढ़ावा देना है। इस वर्ष की प्रदर्शनी में 90 विद्यार्थियों द्वारा बनाए गए 45 अभिनव मॉडल प्रदर्शित किए गए। इन मॉडलों में पानी की बर्बादी रोकने वाले उपकरण, प्राकृतिक जल फिल्टर, मैनहोल दुर्घटना रोकने के लिए अलर्ट मशीनें और रोजमर्रा के सामान से बने कम लागत वाले एयर कंडीशनिंग सिस्टम शामिल थे। नागालैंड ने हाल ही में कोहिमा में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ CPA इंडिया रीजन जोन 3 के 22वें वार्षिक सम्मेलन की मेजबानी की। 11 और 12 नवंबर को आयोजित हुए इस 2 दिवसीय सम्मेलन का विषय था नीति, प्रगति और लोक परिवर्तन के उत्प्रेरक के रूप में विधानमंडल। सम्मेलन में नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश और नागालैंड विधानसभा अध्यक्ष शारिंगेन लोंगकुमेर समेत देश और पूर्वोत्तर के प्रमुख नेताओं ने भाग लिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उद्घाटन भाषण में समावेशी और सतत विकास के लिए सामूहिक संवाद और जन भागीदारी के माध्यम से नीतियां बनाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री रियो ने विधायकों से संसदीय लोकतंत्र और सहकारी संघवाद के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराने का आग्रह किया। सम्मेलन में विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने में विधान मंडलों की भूमिका और पूर्वोत्तर क्षेत्र में हाल ही में बादल फटने और भूस्खलन के संबंध में जलवायु परिवर्तन जैसे विषयों पर विचार विमर्श हुआ। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने समापन सत्र में सम्मेलन की प्रशंसा की। इसमें संसदीय लोकतंत्र की सच्ची भावना दिखी। इस अवसर पर प्रतिभागियों ने 9 प्रस्तावों को अपनाया, जिनमें पूर्वोत्तर राज्यों के लिए बजट आवंटन बढ़ाने और सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष लक्षित कार्यक्रम बनाने की मांग शामिल थी। सम्मेलन में वृक्षारोपण अभियान भी चलाया गया। नागालैंड में सहकारी आंदोलन को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राज्य ने अपना पहला राज्य सहकारी सम्मेलन आयोजित किया। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के उपलक्ष्य में कोहिमा में आयोजित इस 3 दिवसीय कार्यक्रम का विषय था सहकारिता आर्थिक परिवर्तन का उत्प्रेरक। सहकारिता मंत्री जैकब झिमोमी ने उद्घाटन सत्र में पारंपरिक क्षेत्रों से हटकर पर्यटन जैसे उभरते क्षेत्रों में सहकारी उद्यमों के विस्तार पर बल दिया। उन्होंने युवाओं की भागीदारी बढ़ाने और डिजिटल नवाचारों को अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर भी बल दिया। कृषि उत्पादन आयुक्त वी शशांक शेखर ने आर्थिक विकास में सहकारी समितियों की महत्वपूर्ण भूमिका और ये सुनिश्चित करने पर बल दिया कि लाभ जमीनी स्तर तक पहुंचे। सम्मेलन का एक मुख्य आकर्षण नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड NCEL और नागालैंड के मार्को फेड के बीच हुआ समझौता ज्ञापन था। इसका उद्देश्य बाजार संपर्क बढ़ाना, निर्यात के अवसरों को बढ़ावा देना और राज्य भर के सहकारी उत्पादकों को सशक्त बनाना है। इसके अलावा 8 सहकारी समितियों को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए NCDC क्षेत्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। सम्मेलन में स्थानीय उत्पादों की एक प्रदर्शनी भी लगाई गई।
श्रोताओं, ग्लेशियर हमारे पहाड़ों का, हमारी धरती का बहुत बड़ा संसाधन है और नदियों में पानी और वायुमंडल में जो वाष्प और समुद्रों में जो पानी का भराव है वो ग्लेशियर की बदौलत ही है। तो ग्लेशियर के इस संसाधन को लेकर बहुत से शोध चल रहे हैं। इसी कड़ी में अरुणाचल में भी एक विशेष शोध की शुरुआत हुई है। इस पहल का मकसद है कि ग्लेशियर की गतिशीलता और उनकी मॉनिटरिंग को लेकर एक खास रिसर्च की जाए। तो ये किस तरह की रिसर्च है और इससे क्या फायदा होगा, हमारे संवाददाता मनोज ने अरुणाचल प्रदेश से हमें एक विशेष रिपोर्ट भेजी है, आइए आपको सुनवाते हैं।
खांगरी ग्लेशियर साइंटिफिक एक्सपीडिशन 2025 सेंटर फॉर अर्थ साइंसेस एंड हिमालयन स्टडीज CESHS अरुणाचल प्रदेश सरकार और नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च NCPOR मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस गोवा द्वारा मिलकर शुरू किया गया एक खास पहल है, जिसका उद्देश्य पूर्वी हिमालय में ग्लेशियर गतिशीलता, जलवायु परिवर्तन के असर और पानी के सतत संसाधन की वैज्ञानिक समझ को बढ़ावा देना है। 2023 में अपनी शुरुआत के बाद से खांगरी ग्लेशियर एक्सपीडिशन सीरीज का उद्देश्य ग्लेशियर सिस्टम की लंबे समय तक मॉनिटरिंग करना है, ताकि रीजनल क्रायोस्फीयर और हाइड्रोलॉजिकल रिसर्च के लिए मजबूत डेटा बेस विकसित किया जा सके। इस वर्ष के अभियान में CESHS, NCPOR, गोवा, नागालैंड यूनिवर्सिटी और निर्जुली स्थित नेरिस्ट के 11 साइंटिस्ट और इंजीनियर शामिल हुए। मिशन को भारत के जाने माने ग्लेशियोलॉजिस्ट में से एक डॉक्टर परमानंद शर्मा साइंटिस्ट एफ के नेतृत्व में एवं CESHS के क्रायोस्फीयर डिवीजन के टेक्नीकल ऑफिसर और हेड डिजाइनर नीलाम सुनील की अगुवाई में समायोजित किया गया। अभियान के दौरान खांगरी ग्लेशियर और रानी झील का हाई रेजोल्यूशन एरियल सर्वे करने के लिए हाई प्रसिशन सेंसर वाले एडवांस ड्रोन प्लेटफॉर्म लगाए गए। हालांकि रानी झील के इलाके में भारी बर्फबारी की वजह से टीम मास बैलेंस मेजरमेंट के लिए ग्लेशियर तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन रिसर्चर्स द्वारा ग्लेशियर और झील दोनों के एरियल मैपिंग सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया। रानी झील के सोनार बेस्ड बाथीमेट्रिक सर्वे से एक बड़ी कामयाबी मिली, जिससे 20 मीटर की गहराई पर पानी में रहने वाले जीवों की मौजूदगी का पता चला, जो ऊंचाई वाले ग्लेशियर इकोसिस्टम में एक बड़ी खोज थी। टीम ने पहले से लगे ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन और ऑटोमेटिक वाटर लेवल रिकॉर्डर से गर्मियों के मौसम का महत्वपूर्ण डेटा भी संग्रहित किया। इसके अलावा पिघले हुए पानी के बदलावों और हाइड्रोलॉजिकल रिस्पॉन्स का पता लगाने के लिए खांगरी ग्लेशियर के नीचे 24 घंटे स्ट्रीम डिस्चार्ज मेजरमेंट्स भी किए गए। चौथे एक्सपेडिशन की एक बड़ी कामयाबी धारकासो का पहला साइंटिफिक स्केलिंग और रिकॉनसेंस सर्वे था। धारकासो एक ग्लेशियल झील है, जिसे NDMA की कैटेगरी बी ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड GLOF रिस्क झीलों में रखा गया है। स्थानीय भाषा में धारकासो मतलब दही जैसा सफेद है। यह अरुणाचल प्रदेश में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी द्वारा पहचानी गई 29 GLOF अति संवेदनशील झीलों में से एक है। चौथे खांगरी ग्लेशियर साइंटिफिक एक्सपेडिशन का सफलतापूर्वक पूरा होना पूर्व हिमालय में ग्लेशियर का अपडेट पिघले पानी के योग योगदान हाइड्रोमेट्रियोलॉजिकल बदलावों और GLOF के खतरों को समझने के लिए भारत के वैज्ञानिक प्रयासों को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ है। नॉर्थ ईस्ट डायरी के लिए आकाशवाणी ईटानगर से मैं मनोज कुमार शर्मा।
श्रोताओं, इन दिनों हम कार्यक्रम में चर्चा कर रहे हैं पूर्वोत्तर राज्यों से उन स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जिन्होंने हमारी स्वाधीनता में और ब्रिटिश सत्ता उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष में अपना एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। बहुत से इन स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी शहादत दी, अपना बलिदान दिया और बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों ने संघर्ष करके ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ एक बहुत बड़ा विद्रोह छेड़ा। तो पूर्वोत्तर राज्य ऐसे ही कई वीर कहानियों से गुंजायमान है। तो आज हम आपको लिए चलते हैं मेघालय, और मेघालय में ऐसे तीन सेनानियों के बारे में हम जानेंगे जिन्होंने 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश सत्ता और उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष किया, वहां की जनजातीय संस्कृति को बचाने के लिए संघर्ष किया, और जो गारो और खासी पहाड़ियां हैं वहां जनजातीय संस्कृति बसती है जिसमें ब्रिटिश सत्ता ने हस्तक्षेप करने का प्रयास किया था, उसके खिलाफ संघर्ष किया और अपनी शहादत दी। तो आइए आज की ये खास रिपोर्ट सुनते हैं।
भारत के स्वतंत्रता संग्राम की कहानी उन पहाड़ियों, उन बादलों से ढकी घाटियों और उन समुदायों की स्मृतियों में बसती है जहां अपने अस्तित्व, अपनी परंपरा और अपनी भूमि को बचाने के लिए कई साहसी सेनानियों ने संघर्ष किया। पूर्वोत्तर की यह धरती, विशेषकर मेघालय, ऐसे ही अदम्य साहस के प्रसंगों को संजोए हुए है। मेघालय की पहाड़ियों ने तीन ऐसे वीरों को जन्म दिया, उतिरोद सिंह, ऊ कियांग नांगबह और पा तोपन संगमा, जिनकी कहानियां आज भी मेघालय की वादियों में गूंजती है और पूरे भारत को यह याद दिलाती है कि स्वतंत्रता पूरे देश की आत्मा की पुकार थी। कहानी की शुरुआत होती है वर्ष 1802 में जन्मे उतिरोद सिंह सीएमडीएह से। वे नोंखला क्षेत्र के एक पारंपरिक प्रधान थे जिसे जनता केवल शासक नहीं बल्कि अपने जनजीवन का संरक्षक मानती थी। उस समय अंग्रेजों ने ब्रह्मपुत्र और सूरमा घाटी पर अपना नियंत्रण मजबूत कर लिया था और अब वे खासी पहाड़ियों को पार करके एक सड़क बनाना चाहते थे। अंग्रेजी अधिकारी डेविड स्टॉक ने तिरोद सिंह को भरोसा दिलाया कि यदि वे इस मार्ग को अनुमति देंगे तो खासी समुदाय को व्यापार में लाभ होगा और कई द्वार क्षेत्रों का नियंत्रण उन्हें मिलेगा। पर इतिहास हमें बताता है कि यह वादा केवल एक छल था। जब तिरोद सिंह को यह ज्ञात हुआ कि अंग्रेज इस क्षेत्र को अपनी सत्ता में मिलाने का षड्यंत्र कर रहे हैं तो उनके भीतर वह ज्वाला भड़क उठी जिसे दमन से दबाया नहीं जा सकता। 4 अप्रैल 1829 की वह सुबह इतिहास में दर्ज है जब नोंखलाव में तिरोद सिंह की सेना ने अंग्रेजी चौकी पर आक्रमण किया। 2 ब्रिटिश अधिकारी मारे गए और मेघालय के आकाश में स्वतंत्रता का पहला स्वर गूंजा।
आजादी से जिया गंगा में राख बन के बहले, दुनिया के सारे सुख पीछे है मेरा देश पहले। है तिरंगा शान अपनी, देंगे इस पे जान अपनी। जन गण मन अधिनायक जय है तेरा संदेश पहले, दुनिया के सारे सुख पीछे है मेरा देश पहले।
अंग्रेजों ने आधुनिक हथियारों से जवाब दिया पर तिरोद सिंह और उनके योद्धा पहाड़ियों की भाषा में लड़ते थे, यानी गोरिल्ला युद्ध, जिसमें साहस हथियारों की कमी को ढक लेता है। 4 वर्षों तक यह संघर्ष चलता रहा। जंगलों, घाटियों और चट्टानों की आड़ लेकर खासी योद्धा ब्रिटिश सेना को बार बार रोकते रहे, परंतु 1833 में जब तिरोद सिंह गोली से घायल होकर पहाड़ियों में छिपे थे तब उनके ही एक व्यक्ति ने विश्वासघात किया। उन्हें गिरफ्तार कर ढाका भेजा गया जहां 17 जुलाई 1835 को उन्होंने कैद में अंतिम सांस ली। उनकी मृत्यु ने खासी समाज के संघर्ष को और दृढ़ किया। कुछ ही दशकों बाद मेघालय में स्वतंत्रता का एक और स्वर जन्म ले चुका था। इतिहास के प्रवाह में जब यह कथा आगे बढ़ती है तो वह सहज ही हमें दूसरे महानायक ऊ कियांग नांगबह की ओर ले जाती है। यह वही समय था जब ब्रिटिश सत्ता धीरे धीरे जनजातीय परंपराओं में हस्तक्षेप बढ़ा रही थी, लेकिन कियांग नांगबह जैसे नेताओं के लिए यह हस्तक्षेप केवल कर या कानून का मामला नहीं था, यह उनकी सांस्कृतिक अस्मिता पर चोट थी। 1860 में जब औपनिवेशिक शासन ने जयंतिया पहाड़ियों में घर कर लगाया और उनकी पारंपरिक प्रथाओं को नियंत्रित करना शुरू किया तो जनजातियों के भीतर असंतोष प्रज्वलित हो उठा। कियांग नांगबा इस असंतोष की सामूहिक आवाज बनकर उभरे। उनके नेतृत्व में जनता ने पहला खुला प्रतिरोध तब दिखाया जब उन्होंने एक ब्रिटिश पुलिस चौकी पर हमला कर हथियारों के भंडार को जला दिया। यह केवल आक्रमण नहीं था, यह एक घोषणा थी कि यह भूमि हमारी है और हमारी परंपराओं पर बाहरी शासन का कोई अधिकार नहीं। कियांग नांगबा और उनके सहयोगियों ने दिन रात गुरिल्ला युद्ध चलाया जिससे ब्रिटिश प्रशासन पूरी तरह अस्थिर हो गया। हर बार अंग्रेजी सेना पहाड़ी क्षेत्रों में प्रवेश करती तो उन्हें अंधेरे जंगलों, घने कोहरे और अदृश्य योद्धाओं के प्रहार का सामना करना पड़ता। परंतु जितना तीव्र उनका संघर्ष था उतना ही कठिन था ब्रिटिश शासन का दमन। दिसंबर 1862 में भी वही हुआ जो तिरोध सिंह के साथ हुआ था। एक विश्वस्त साथी के विश्वासघात के कारण कियांग नांगबा गिरफ्तार हुए। 3 दिनों के भीतर एक औपचारिकता भर के मुकदमे में उन्हें फांसी की सजा दे दी गई। कहते हैं जब उन्हें फांसी पर चढ़ाया जा रहा था तब उन्होंने भीड़ से कहा, यदि कल सूर्य पश्चिम से उगता दिखे तो समझना कि मेरे लोग पराजित हुए, पर जब तक सूर्योदय पूरब में होता है तब तक जानना कि जयंतिया की आत्मा जीवित है।
मिटाने से नहीं मिटते, डराने से नहीं डरते, वतन के नाम पे
उनके शब्द आज भी मेघालय की स्मृति में गूंजते हैं। इतिहास आगे बढ़ता है और हमें ले जाता है गारो पहाड़ियों की ओर, जहां एक और कथा सुनाई देती है। ये है पा तोगन संगमा, 19वीं सदी के वह वीर योद्धा जिनकी ताकत, समर्पण और अदम्य साहस आज भी गारो समाज में याद किया जाता है। 1872 का साल था, ब्रिटिश सैनिक गारो पहाड़ियों में प्रवेश कर चुके थे और उन्होंने चीसो बिब्रा के निकट अपना शिविर स्थापित कर लिया था। जिला प्रशासन, कानून और कर, इन सब के नाम पर वह क्षेत्र धीरे धीरे अंग्रेजों के नियंत्रण में दबाया जा रहा था। ऐसे समय में पा तोगन संगमा केवल एक योद्धा नहीं बने, वे पूरे समुदाय की रक्षा का प्रतीक बने। युद्ध के दिन जब गारो योद्धाओं ने ब्रिटिश शिविर पर हमला किया तो उनके पास तलवारें, ढालें और संकल्प था। दूसरी ओर अंग्रेजी सेना के पास बारूद, बंदूकें और आधुनिक हथियार। गोलियों की तेज बौछार में गारो योद्धा एक एक कर गिरते गए, पर पीछे हटना उनके स्वभाव में नहीं था। पा तोगन संगमा सबसे आगे थे और वहीं लड़ते हुए मातृभूमि की रक्षा करते करते उन्होंने प्राण त्याग दिए। उनकी शहादत ने गारो पहाड़ियों में एक ऐसा संदेश छोड़ा कि स्वतंत्रता का मार्ग चाहे जितना कठिन हो किंतु आत्मसमर्पण उसका विकल्प नहीं। तिरोध सिंह, कियांग नांगबा और पा तोगन संगमा, 3 व्यक्तित्व, 3 कालखंड, 3 दिशाओं से उपजे संघर्ष, परंतु उनके भीतर एक ही ज्योत प्रज्वलित थी, उनकी भूमि की गरिमा, उनकी परंपरा की पवित्रता और अपनी जनता के अधिकार की रक्षा। एक ने ब्रिटिश छल के विरुद्ध खड़ा होकर पहाड़ियों में 4 वर्षों का संग्राम छेड़ा, दूसरे ने जनजातीय परंपराओं को बचाने के लिए कर व्यवस्था और औपनिवेशिक हस्तक्षेप को चुनौती दी और तीसरे ने गारो पहाड़ियों की रक्षा के लिए अंतिम क्षण तक लड़ते हुए अपनी जान न्यौछावर कर दी। पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं जया भारती।
श्रोताओं,
श्रोताओं, हम बात करेंगे पूर्वोत्तर भारत की एक अद्भुत धरोहर के बारे में। दरअसल बीते दिनों पूर्वोत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट जो यूएनेस्को द्वारा जारी की जाती है उसकी अस्थायी यानी टेंटेटिव सूची में शामिल किया गया है। इसमें दो स्थल महत्वपूर्ण हैं, एक तो नागालैंड में नागा हिल्स और मेघालय में खासी हिल्स, जहां पर बहुत सी गुफाएं पाई जाती हैं। नागालैंड का नागा हिल्स इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ की घाटियां और पहाड़ियां भूगर्भीय दृष्टि से और प्राकृतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। दूसरी ओर मेघालय की खासी हिल्स की गुफाएं भूगर्भीय और ऐतिहासिक दृष्टि से अपना एक बहुत महत्व रखती हैं। तो हम आपको दो विशेष रिपोर्ट्स सुनवाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले सुनते हैं हम नागा हिल्स के बारे में कि किस तरह से नागा हिल्स का एक बहुत बड़ा भूगर्भीय और प्राकृतिक महत्व है और किस तरह से यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट की टेंटेटिव सूची में शामिल होना एक बहुत बड़ा ये गौरव का क्षण है। तो आइए ये खास रिपोर्ट सुनते हैं।
नागालैंड का किफिरी जिला आज पूरे देश के लिए गर्व का विषय बना है। यहाँ का प्रसिद्ध नागा हिल ऑफियोलाइट अब यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज की अस्थायी सूची में शामिल हो गया है। इसे प्राकृतिक धरोहर की श्रेणी में रखा गया है। भारत ने 27 अगस्त को 7 नए स्थलों के नाम यूनेस्को को भेजे थे, जिनमें नागालैंड का ऑफियोलाइट हिल, महाराष्ट्र के पंचगनी और महाबलेश्वर के डेक्कन ट्रैप्स, कर्नाटक के उडुपी में सेंट मैरी आइलैंड्स, मेघालय की खासी हिल्स की गुफाएं, आंध्र प्रदेश के एर्रमट्टी डिब्बालू और तिरुमला की पहाड़ियां और केरल का वर्कला शामिल है। अब भारत के कुल 69 स्थल इस अस्थायी सूची में हैं। इनमें 49 सांस्कृतिक, 3 मिश्रित और 17 प्राकृतिक धरोहरें शामिल हैं। नागा हिल ऑफियोलाइट किफिरे जिले के पंगरो क्षेत्र के पास स्थित है। इसे भारत के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने पहले ही राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक घोषित कर दिया था। ये क्षेत्र भारत और म्यांमार की टेक्टोनिक सीमा पर स्थित है। पृथ्वी की परतें कैसे बनी, महाद्वीप कैसे आपस में टकराए और पर्वत कैसे बने, इन सब को समझने के लिए ये स्थल दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में गिना जाता है। यहाँ की चट्टानें करोड़ों वर्ष पुरानी हैं और पृथ्वी की गहराई की झलक दिखाती हैं। लेकिन नागा हिल ऑफियोलाइट केवल विज्ञान के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, इसका प्राकृतिक और सांस्कृतिक महत्व भी बहुत बड़ा है। ये क्षेत्र फाकिम वन्यजीव अभयारण्य और कई सामुदायिक संरक्षित क्षेत्रों के साथ जुड़ा हुआ है। इसे दुनिया के 18 सबसे बड़े जैव विविधता वाले क्षेत्रों में गिना जाता है। यहाँ दुर्लभ और संकटग्रस्त पक्षी जैसे रूफस, नेक्ड हॉर्नबिल और ब्लाइट्स ट्रेगोफैन पाए जाते हैं। ये इलाका नागा समाज की पुरानी मौखिक परंपराओं, लोक कथाओं और प्रकृति से जुड़े सामुदायिक संरक्षण के तरीकों को भी संभाले हुए है। भारत ने नागा हिल ऑफियोलाइट की तुलना दुनिया के कुछ मशहूर स्थलों से की है। इनमें ऑस्ट्रेलिया का मैक्वेरी द्वीप शामिल है, जहां समुद्र की सतह से ऊपर महासागरीय परत और मेंटल की चट्टानें दिखाई देती हैं। इस तरह कैमरून का दजा फौना रिजर्व भी एक उदाहरण है, जहां भूवैज्ञानिक संरचना से ही वहां की जैव विविधता आकार लेती है। नागा हिल भी अपनी खनिज समृद्ध भूमि से अनोखे पारिस्थितिक तंत्र को जन्म देता है। भूगोल की दृष्टि से नागा हिल्स समुद्र तल से लगभग 3000 मीटर तक की ऊंचाई पर फैले हैं। ये पहाड़ियाँ नागालैंड के दक्षिणी और पूर्वी हिस्से में म्यांमार की सीमा से लगती हैं। घने जंगलों, तीखी ढलानों और गहरी घाटियों से भरे इस क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता किसी को भी आकर्षित कर सकती है। यहाँ अनेक छोटी नदियाँ और झरने बहते हैं जो इसे जल संपदा से समृद्ध बनाते हैं। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज समिति की ओर से नागा हिल ऑफियोलाइट को मान्यता मिलने के बाद ये नागालैंड से विश्व धरोहर सूची में दर्ज होने वाला पहला स्थल होगा। इससे न केवल नागालैंड बल्कि पूरे उत्तर पूर्व भारत की पहचान और महत्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और बढ़ेगा। कोहिमा से असुनुओ की रिपोर्ट के साथ पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं सरफिरोजी।
तो नागा हिल्स की इस रोचक यात्रा के बाद अब हम आपको लिए चलते हैं मेघालय की कंदराओं में। तो मेघालय की खासी हिल्स की गुफाएं ऐतिहासिक और भूगर्भीय महत्व रखती हैं। तो आइए जानते हैं कि इन खासी हिल्स की गुफाओं का क्या महत्व है और किस तरह से ये भारत की एक अद्भुत ऐतिहासिक धरोहर है।
पूर्वोत्तर भारत का राज्य मेघालय अपनी पहाड़ियों, झरनों और घने जंगलों के लिए तो प्रसिद्ध है ही, लेकिन इसके भीतर एक और अद्भुत संसार छिपा है, गुफाओं का संसार। इन गुफाओं को मेघालयन एज केव्स के नाम से जाना जाता है। ये गुफाएं न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में भूगर्भीय और ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। मेघालय का शिलोंग पठार चूना पत्थर से समृद्ध है, इसी कारण यहाँ पर बड़ी संख्या में गुफाएं बनी हुई हैं। अब तक कम से कम 12 गुफाएं यहाँ चिन्हित की गई हैं, लेकिन इनमें से 4 गुफाएं मावलूह गुफा, अरवाह गुफा, मावसमाई गुफा और क्रीमपुरी गुफा विशेष महत्व रखती है। ये चारों गुफाएं पूर्वी खासी हिल्स क्षेत्र में स्थित हैं और अपने आकार, भूगर्भीय विशेषताओं और पहुँच की सुविधा के कारण चयनित की गयी है। मावलूह गुफा का नाम सबसे प्रमुख रूप से लिया जाता है क्योंकि यहाँ पर पाई गई स्टेलेक्टाइट और स्टेलेगमाइट संरचनाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ग्लोबल बाउंड्री स्टेरोटाइप सेक्शन एंड पॉइंट यानी GSSP के रूप में मान्यता दी गई है। यही वो स्थान है जिसने पूरी दुनिया में मेघालयन एज नामक कालखंड को परिभाषित किया। ये कालखंड लगभग 4200 वर्ष पहले के उस समय को दर्शाता है जब एक भयंकर सूखा पड़ा और कई सभ्यताएं धराशाही हो गई। वैज्ञानिकों ने मावलूह गुफा से प्राप्त नमूनों का अध्ययन कर ये प्रमाणित किया कि उस समय का जलवायु परिवर्तन किस प्रकार हुआ। यही कारण है कि मावलूह गुफा को अंतर्राष्ट्रीय भूगर्भीय समुदाय ने अत्यंत महत्वपूर्ण धरोहर माना है। सुरक्षा की दृष्टि से इन गुफाओं पर ध्यान देना आवश्यक है। चूना पत्थर की खदानों का दबाव, पर्यटन का बढ़ता बोझ और प्राकृतिक नाजुकता इन गुफाओं को खतरे में डाल सकते हैं। यही कारण है कि भारत सरकार ने मावलूह और अरवाह गुफाओं को राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक धरोहर स्थल घोषित किया है। इसके अलावा जियो हेरिटेज बिल पर भी विचार चल रहा है जिससे भविष्य में गुफाओं की सुरक्षा और मजबूत होगी। दुनिया के अन्य देशों में भी गुफाएं हैं, जैसे स्लोवेनिया की स्कोजैन गुफाएं या अमरीका की कार्लसबैड गुफाएं, लेकिन मेघालयन एज की गुफाएं उनसे अलग हैं। यहाँ की विशेषता ये है कि इन गुफाओं ने मानव इतिहास और जलवायु परिवर्तन की सटीक गवाही दर्ज की है, यही उन्हें वैश्विक महत्व प्रदान करता है। मेघालय की इन गुफाओं को केवल प्राकृतिक धरोहर नहीं बल्कि एक जीवित प्रयोगशाला कहा जा सकता है, जहाँ हर बूंद पानी और हर चट्टानी संरचना में पृथ्वी का इतिहास लिखा हुआ है। ये इतिहास केवल वैज्ञानिकों के लिए ही नहीं बल्कि हम सभी के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमें बताता है कि प्रकृति में हुए बदलाव ने किस प्रकार मानव सभ्यताओं को प्रभावित किया है। इस प्रकार मेघालयन एज गुफाएं न केवल भारत की बल्कि पूरी दुनिया की अमूल्य धरोहर हैं। ये गुफाएं हमें अतीत से जोड़ती हैं, वर्तमान को समझने में मदद करती हैं और भविष्य के लिए चेतावनी भी देती हैं। पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं आकर्षिता सिंह।
श्रोताओं, आज का पूर्वोत्तर डायरी का अंक अब यहीं समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का अंक हर बार की तरह रुचिकर लगा होगा और इस संबंध में आप अपनी प्रतिक्रिया हम तक जरूर पहुंचाइए। आप हमारी ईमेल आईडी का पता नोट करें airnsdtalks@gmail.com। आप हमारा व्हाट्सएप नंबर भी प्रतिक्रिया के लिए नोट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। हम अगले रविवार शाम 5:30 बजे आपके साथ पूर्वोत्तर डायरी का एक नया अंक लेकर फिर उपस्थित होंगे। आज के कार्यक्रम को हम यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। आलेख व संकलन कमल कुमार प्रजापति, प्रस्तुति सहायक दानिश जैदी।
उत्तर पूर्व अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी। उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी।